استثنی 29 باب اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ ہوریب میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے، امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیون اور بیسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے روبینیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کو آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر دے دیا۔ پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے، اور وہ تیرا خدا ہو جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں، پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں۔ تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو، اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرین اور ناگدونا پیدا کرے، اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر بریختہ ہوگی، اور سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفائے روزگار سے مٹا دے گا، اور خداوند اس عہد کی ان سب لانتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے बुरी सजा के लिए जुदा करेगा, और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदा की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदमा और जोबीम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने, जो अहद इनके साथ इनको मुल्के मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत की और प्रस्तुति की जिनसे वो वाकिफ ना थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी ना था। इसलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गजब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। इस्तिस्ना 29वां बाब। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मुआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हौरेब में बांधा था। सो मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्के मिस्र में फिराउन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है, इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए, और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई, और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और जब तुम इस जगह आए तो हिस्बून का बादशाह सय्योन और बेसन का बादशाह औज हमारा मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मारकर उनका मुल्क ले लिया और उसे रोबेनियों को और जदियों को और मनीषियों को आधे कबीले को मीरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इसराइली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, खा वो तेरा लकड़हारा हो खा सका, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो, जैसी उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहां हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहां हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूं। तुम खुद जानते हो कि मुल्के मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरू चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके हाथ थी। सो ऐसा न हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तुति करे, या ऐसा न हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंद्रेन और नागदोना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि खा मैं कैसा ही हटी होकर तर के साथ खुश्क को फना कर डालूं, तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरीखता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसके नाम को सफाए रोजगार से मिटा देगा, और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं, उसे इसराइल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा, और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदा की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदमा और जोबीम की तरह उजड़ गया जिनको खुदावन ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावन ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्के मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत की और प्रस्तुति की जिनसे वो वाकिफ ना थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी ना था। इसलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का, और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गजब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें।